कारणंगा और मंगलाचरण के रूप में हम नमोकार मंत्र बोल लेते हैं। प्रणमो हरिहंताणम प्रणमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम प्रणमो वज्रायाणम नमो देवसावनम एतो पंचणमे यारे सर्वसावसनाशनो मंगलाणम च सर्वेति परमं हि मंगलम् सारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलीषण मो मंगलम सारी लोगित्यमा हरिहंता लोगित्यमा सिद्धा लोगित्यमा साहू लोगित्यमा केवलीषण मो लोगित्यमो सारी शरण पवज्यामी हरहंते शरण पवज्यामी सिद्धे शरण पवज्यामी साहू शरण पवज्यामी प्रणमोकार मंत्र के संदर्भ में भी अपने यहाँ चर्चा पिछले एक अध्याय से हुई है। आप लोगों की यदि कोई डाउट हो यदि कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर वह बच्चों से बात करते हैं पंच परमेश्वरों के बारे में मंगल उत्तम शरण के बारे में कुछ प्रश्न पूछना है।
अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
हाँ कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।
पता नहीं है कि
चलिए हम बात करते हैं। नहीं है ना किसी को भी कोई डाउट तो हम बात शुरू करते हैं चार मंगल उत्तम और शरण के संदर्भ में। पहले हुई है आप लोगों की ऐसी कोई चर्चा मंगल उत्तम शरण के बारे में?
पंडित जी ने
देखिए मंगल किसे कहते हैं। हाँ निलेश जी ने की होगी हो सकता है थोड़ी बहुत बात। मंगल किसे कहते हैं? चार मंगल वाला पाठ है बालभूत पाठ वाला भाग एक में भी दूसरा पाठ है जिसका नाम है चार मंगल और उसने चर्चा की है मंगल के बारे में उत्तम के बारे में और शरण के बारे में। बालभूत पाठमाला ये जो है ये बुक क्या है आप लोगों के पास में होगी सामने है किसी के?
हाँ है हिंदी में है।
हाँ है
हिंदी में है सामने। अच्छा मेरे पास में नहीं है एक्चुअल में सामने है लेकिन कोई बात नहीं जहाँ तक मुझे ध्यान है इसमें जो मंगल की परिभाषा दी हुई है मंगल की ऐसी परिभाषा दी है जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। ये मंगल की परिभाषा उसने दी हुई है और हम लोगों को मंगल की यही परिभाषा याद करनी है। किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले मंगलाचरण होता है और मंगल को याद किया जाता है। अब वो मंगल कौन होते हैं कैसे होते हैं अब मंगलाचरण क्यों किया जाता है इस संदर्भ में हमारा स्मरण होना चाहिए। मंगलाचरण क्यों किया जाता है मंगलाचरण करने के क्या हेतु है क्या कारण है इसकी चर्चाएं कई शास्त्रों में की है कई ग्रंथों के अंदर उसकी बात की गई है। तो कई कारण है मंगलाचरण करने के। सबसे पहले इष्ट देव का स्मरण मंगलाचरण करने का कारण कहा गया है। दूसरी बात कही गई है हमारे मन में भी विकृति हो मन में भी चंचलता हो उस चंचलता को रोकना ये भी वास्तव में मंगलाचरण करने का कारण है। इसके कारण क्या है चंचलता रुक जाती है। हमारा उपयोगी इधर उधर दौड़ रहा था हमारा उपयोगी इधर भटक रहा था वो भटकता हुआ उपयोग मंगलाचरण करने के काल में स्थिर हो जाता है। इष्ट देव का स्मरण होता है चित्त की स्थिरता होती है और किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आवे कोई बाधा नहीं आवे जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसके बीच में उसके निवारण के लिए भी हम मंगलाचरण करते हैं कि हमारा ये कार्य निर्विघ्न बिना किसी बाधा के बिना किसी प्रॉब्लम के संपन्न हो जाए। तो इस संदर्भ में मंगल चार मंगल हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। जनरली किसी भी कार्य को करने से पहले मंगलाचरण करने की परंपरा ये बहुत उत्तम परंपरा रही है। जैन परंपरा में तो है ही, हिंदू परंपरा में भी ऐसी बातें मिलती है, मतलब हिंदू हो चाहे जैन हो ऐसी बातें मिलती है। तो मंगलाचरण जो किया जाता है, कई ग्रंथ ऐसे भी मिलेंगे आपको जिन ग्रंथों में मंगलाचरण नहीं किया गया। जैसे गुणभद्राचार्य ने कचाय पावड़ की रचना की और किया, तो उसके टीकाकारों ने प्रश्न उठाया इस तरह का कि भाई यहाँ ग्रंथकर्ता ने मंगलाचरण क्यों नहीं किया। तो उसका जवाब इस तरह का दिया गया कि जो कार्य स्वयं मंगलमय हो, स्वयं मंगल स्वरूप हो, जिन वाणी की रचना कर रहे हैं, ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, लोकोपकारी लोक कल्याणकारी बात हम कहना चाहते हैं, वो स्वयं ही मंगल स्वरूप है। हमारा तो प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक पद, प्रत्येक गाथा मंगल स्वरूप है, तो प्रत्यक्ष मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है। सर्वोत्कृष्ट मंगल के रूप में जो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम तो श्रेष्ठ को कहते हैं और मंगल कहते हैं मोहराग देश रूपी पापों को गलाने वाला। तो मोहराग देश रूपी पापों को गलाने वाला कौन हो सकता है ऐसा मंगल जो मोहराग देश रूपी पापों को गलाने में समर्थ हो सके। देखिए सच बात तो ये है, असली मंगल तो अपना आत्मा ही है, क्योंकि मोहराग देश पापों को गला दे और सत्या से उत्पन्न करे। अनंत परमात्मा सत्या से उत्पन्न करने में निमित्त हो सकते हैं, इसलिए उनके उपचार से मंगल कहा है। चार नाम है ना मंगल के, दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो मंगल की परिभाषा और एक चार प्रकार के मंगल के नाम। मंगल की परिभाषा के अंदर वो चार प्रकार के नाम जो है वो सटीक बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, उस संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करें परिभाषा के बारे में, मोहराज देश रूपी पापों को गलावे, गल गए हो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, गलावे। कौन गला सकता है, किसके मोहराज देश रूपी पापों को गलावे, दूसरों के पापों को गलावे। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप को गलाने में समर्थ नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पुण्य को कमाने में समर्थ नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति का किया हुआ कर्म का फल किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलता, स्वयं के द्वारा किए गए परिणामों का फल स्वयं को ही मिलता है। तो हमारे मोहराग देश रूपी पापों को कौन गलाएगा, बोलिए। तीन काम हो सकते हैं मोह के संदर्भ में, मोह का बढ़ना, मोह का घटना और मोह का नाश होना। मोह की तीन परिस्थितियां बनती है, तीव्र मोह, मंद मोह माने मोह का घटना, और तीसरी कंडीशन बनेगी मोह के साथ में मोह का नाश। इस संदर्भ में विशेष ज्ञानियों का, विद्वानों का, ब्रह्मचारी रविंद्र जी का यदि आपने नाम सुना हो, बड़े पंडित जी के नाम से जाने जाते हैं यहाँ भारत में, ये ऐसा कहते हैं कि हमारे जो सगे संबंधी हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो परिवारजन हैं, ये लोग मोह बढ़ावन आ रहे हैं, मोह बढ़ाने वाले हैं। पंच परमेष्टि है, देव शास्त्र गुरु है, अरिहंत है, सिद्ध है, आचार्य उपाध्याय साधु है, जिनवाणी है, जिन धर्म है, ये मोह घटावन हार है, नशावन हार नहीं। अरिहंतों की शरण यदि हम लेंगे, सिद्धों की शरण यदि हम लेंगे, आचार्यों की शरण लेंगे, उपाध्याय की शरण लेंगे, साधुओं की शरण लेंगे, इन पंच परमेष्टियों की शरण लेने से हमारा मोह बढ़ेगा तो नहीं, कम होगा। साधर्मियों के समागम से क्या होगा, मोह घटेगा। तो मोह नष्ट कैसे होगा, कि अपने आत्मा की शरण लेने से मोह नष्ट होगा। तो जगत जनों के संसर्ग से मोह बढ़ता है, पंच परमेष्टियों या साधर्मियों के संपर्क से मोह घटता है, और अपने आत्मा के अवलंबन से मोह नष्ट होता है। यहाँ हम बात किसके संदर्भ में कर रहे हैं, मोहराग देश रूपी पापों को गलाने वाले के संदर्भ में बात कर रहे हैं, है ना। तो मोहराग देश रूपी पापों को गलाने वाला मतलब नष्ट करने वाला कौन है, मोहराग देश रूपी पापों को बढ़ाने वाले जगत जन, मोहराग देश रूपी पापों को घटाने वाले अरिहंत सिद्ध साधु ये सब, और मोहराग देश रूपी पापों को नष्ट करने वाला कौन है कि अपना आत्मा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में अपना आत्मा, अपना दैहिक स्वभाव, वही वास्तव में एकमात्र हमारे लिए मंगल स्वरूप हो सकता है। चलिए मंगल की परिभाषा के दूसरे पॉइंट के संदर्भ में हम बात करें, मोहराग देश रूपी पापों को गलावे और दूसरा पॉइंट भी है कच्चा सुख उत्पन्न करे। सेकंड पॉइंट क्या है, सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। सच्चा सुख को उत्पन्न कर सकता है, बोले मैं भगवान की शरण में जाऊं तो मुझे सच्चा सुख मिल जाएगा, अरिहंतों की शरण में जाऊं तो सच्चा सुख मिल जाएगा, सिद्धों की शरण में जाने से क्या मैं सुखी हो सकता हूँ, मुनिराजों की शरण में जाने से क्या मैं सुखी हो सकता हूँ, यदि नहीं हो सकता हूँ तो इतने वो मेरे लिए मंगल नहीं हो सकते, तो फिर मेरे लिए मंगल कौन होंगे। जो सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं, इंद्रिय जन सुख उत्पन्न करे वो मंगल नहीं है। हमारे लिए मंगल है या नहीं, सुख उत्पन्न करती है। इंटरनेट हमारे लिए मंगल है या नहीं, सुख उत्पन्न करता है। यहाँ सुख की बात नहीं की है, यहाँ बात किसकी की है, सच्चा सुख उत्पन्न करे। जरा ध्यान दीजिए आप, मेरे पास दुख नहीं है, लेकिन आप अपने दुख में देखिए, मोह राग द्वेष रीति पापों को गलावे और सुख उत्पन्न करे नहीं, सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। सुख और सच्चा सुख में थोड़ा सा डिफरेंस है, सुख किसे कहें और सच्चा सुख किसे कहें, बोलो। जो परमानेंट सुख हो, टेम्परेरी सुख नहीं हो, सदा बना रहे, वो है सच्चा सुख, और जो टेम्परेरी सुख है वो सच्चा सुख नहीं है। टीवी का सुख करंट पे डिपेंड करता है, इंटरनेट का सुख कनेक्शन मिलने पर डिपेंड करता है, कुछ भी कई तरह की व्यवधान है, वायरस है, प्रॉब्लम्स है, नहीं उसमें बाधाएं उत्पन्न होती रह सकती है, लेकिन अपना जो आत्मिक सुख है वो निराबाद है, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। तो सर्व बाधाओं से रहित जो सुख होगा उसका नाम है सच्चा सुख। इंद्रिय सुख सच्चा सुख नहीं हो सकता है, चाहे आंखों से मिलने वाला सुख हो, चाहे कानों से सुन करके म्यूजिक के माध्यम से होने वाला सुख हो, चाहे रत्ना इंद्रिय से चख करके अच्छा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करके मिलने वाला सुख, वो सच्चा सुख नहीं हो सकता है। स्पर्श से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं हो सकता है, रत्ना ग्रहण चक्षु और कर्ण इन पांच इंद्रियों और मन से मिलने वाला सुख सच्चा सुख नहीं हो सकता है, लेकिन स्वभाव में जो सुख है वो सच्चा सुख है। तो सच्चा सुख उत्पन्न करे वो मंगल है। हम आपसे पूछते हैं अरंतों की शरण में जाने से क्या वो सच्चा सुख मिल जाएगा। हे भगवान, हम बहुत दुखी हैं, आप तो अनंत सुखी हो, थोड़ा बहुत सुख यदि आप दे दोगे आपका क्या बिगड़ जाएगा। बोलो, कोई भक्त यदि भगवान के पास में जाकर के कुछ मांगता है भगवान क्या कहेंगे, आशीर्वाद दे देंगे हाथ उठा करके, तथास्तु जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, जाओ तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा आशीर्वाद मिल जाएगा भगवान से, दे देते हैं भगवान। कुछ अन्य दर्शनों में, कुछ अन्य संप्रदायों में जैन दर्शन के अतिरिक्त, जैन संप्रदाय के जो भाई हैं उन दर्शनों और संप्रदायों में से ऐसे ईश्वर की कल्पना की गई है जो जगत के जीवों को सुख देते हैं, लेकिन हमारे भगवान ने सुख देते हैं न दुख देते हैं। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी है भगवान, हम अपराध करें और भगवान के पास में चले जाए, हे भगवान आप ही कथा, आपकी शरण में आया हूँ, हे भगवान आप ही बचा सकते हैं, भगवान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वे भगवान, तो भगवान भी अपराधी हैं यदि वे शरण देते हैं, अपराधी को शरण देते हैं। तो वास्तव में भगवान वितरागी हैं, वे किसी को शरण देने वाले नहीं हैं, वे किसी को बचाने वाले नहीं हैं, वे किसी की रक्षा करने वाले नहीं हैं, वे किसी को सुख नहीं देते तो किसी को सुख भी नहीं देते। कैसा स्वतंत्रता और स्वाधीनता का मार्ग है, भगवान किसी को सुख नहीं देते। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत अपने समान बस बना, ऐसी पंक्ति आती है कई पूजन वगैरह में, स्थितियों में, पाठ वगैरह में, तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, हे भगवान तुम भक्तों को कुछ नहीं देते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अपने समान बस बना लेत। हे भगवान आप देते तो कुछ नहीं हो, लेकिन देने को इतना दे देते हो कि अपने समान बना लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं, तो सच्चा सुख उत्पन्न करे तो कौन करेगा सच्चा सुख उत्पन्न, अरंत भगवान हमारे सच्चे सुख उत्पन्न करने वाले हैं, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। जो भी जीव मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, जो भी जीव परम पद की प्राप्ति करते हैं, अपने ही आश्रय से करते हैं, अपने ही अवलंबन से करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति इनको सुखी करने वाला नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति दुख देने वाला नहीं है। स्वयं कृतम कर्म जगात्मना पुरा फलम यदि लगते शुभ शुभम परेण दत्तम यदि लब्ध थी उत्तम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम सदा। हमारी पाठ की पंक्ति है कि अमित गति आचार्य की, हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल यदि भगवान देने वाले हो तो हम तो भगवान के अधीन हो जाएंगे, फिर सदा जीवन पर्यंत भगवान दास बनकर रह जाएंगे, कभी भगवान नहीं बन पाएंगे। भगवान की भक्ति और पूजा करने वाले, आराधना करने वाले भगवान दास बनते हैं, भगवान नहीं बनते। लेकिन अपने गायक प्रभु की आराधना करने वाले, अपने स्वभाव का अवलंबन लेने वाले भगवान दास नहीं भगवान बन जाया करते हैं। जो सच्चा सुख उत्पन्न करे, जहाँ सच्चा सुख है वहीं से तो सच्चा सुख मिलेगा ना। जो सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। कुल मिलाकर के दो बातें मंगल के संदर्भ में कही गई, मोह राग द्वेष रूपी पापों को जलाना और सच्चे सुख को उत्पन्न करना। हमें ऐसा लगता है इतने स्पष्टीकरण से ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मोह राग द्वेष को गलाने वाला भी अपना आत्मा ही है और सच्चे सुख को उत्पन्न कराने वाला भी अपना आत्मा ही है। इसलिए वास्तव में वस्तु स्थिति तो यही है कि अपना आत्मा ही अपने लिए मंगल है। बोलिए, ये तो हुई परम सत्य बात। अब बात करते हैं दूसरी, यदि यही आप ये कहते हो कि आत्मा ही मंगल है, एक ही मंगल है, तो फिर ये चार मंगल क्यों दिखे? बोलो, ऐसा प्रश्न तो होगा ना आप लोगों का। आप कह रहे हो एक आत्मा मंगल है, आप कह रहे हो एक आत्मा के आश्रय से मोह राग द्वेष नष्ट होते हैं, आप कहते हो एक आत्मा ही सत्य सुख को उत्पन्न कराने वाला है। तो हमें इतनी बात आप बतला दीजिए, क्लियर कर दीजिए बिल्कुल, कि ये जो बालभूत पाठ वाला भाग है इसमें चार मंगल हेडिंग से जो इस पाठ की रचना की गई है ये सही है या गलत है। आप तर्क कर सकते हैं, आप आर्ग्यू कर सकते हैं मेरे से, आप ऐसा तर्क कर सकते हैं कि चार मंगल है या एक मंगल है। फिर पाठ का नाम चार मंगल नहीं होना चाहिए, फिर पाठ का नाम एक मंगल होना चाहिए। देखिए, तर्क हो सकता है ऐसा, बात तो आपकी सच्ची है कि भाई चार मंगल लिखे हैं, लेकिन भैया चार मंगल किसके लिए लिखे? अरहंत भगवान मंगल है तो क्यों मंगल है, सिद्ध मंगल है तो क्यों मंगल है, साधुओं को मंगल क्यों कहा गया है, केवली भगवान द्वारा बतलाया गया जितना की धर्म मंगल है तो क्यों है? बोलो, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा हमारे को कि उनको मंगल क्यों कहा गया। ये चार ही मंगल कहे गए ना, चार मंगल के नाम आप लोगों को याद हो गए होंगे और होने भी चाहिए। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, अरहंता मंगलम मतलब अरहंत मंगल है, सिद्धा मंगलम माने सिद्ध भगवान मंगल है, साहू मंगलम मतलब साधु मंगल है, केवली प्रणत्तम धम्मम मंगल, केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम, केवली प्रणत्तो, प्रणत्तो मतलब प्रणत, उनके द्वारा बतलाया गया, केवली प्रणत्तो केवली भगवान द्वारा बताया गया धम्मो मंगलम धर्म मंगल है। भगवान ने जो केवली भगवान ने जो कहा है, भीतराजी भगवान ने जो कहा है वो धर्म मंगल है। देखो, धर्म मंगल है ऐसी चर्चा से बहुत लोग करते हैं, धर्म मंगल है, लेकिन कौन सा धर्म मंगल है? चले, चार पॉइंट यदि आप लोगों को याद हो गए हो तो फिर मैं एक एक की बात करता हूँ। ये चार नाम याद हो गए थे आप सभी को, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और धर्म मंगल। ओके हिराज भाई।
हाँ जी, हाँ जी।
देखिए, अरिहंत मंगल क्यों है, सिद्ध और साधु, एक शंका और हो सकती है यहाँ आप लोगों के चित्र में खड़ी हो सकती है, कर्मेशी जो पांच ही है इसमें से दो गायब क्यों कर दिए, थोड़ा ये भी प्रश्न हो सकता है ना। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांच कर्मेशी हैं, नमोकार मंत्र वाले पहले पाठ में हमने देखे थे। इन पांच कर्मेशियों में से यहाँ तीन की चर्चा की है, आचार्य और उपाध्याय की बात नहीं कही है। प्रश्न खड़ा होता है कि आचार्य और उपाध्याय को गायब क्यों कर दिया, इसमें से क्यों निकाल दिया? देखिए, जवाब दो तीन प्रकार से हो सकते हैं। आप लोग भी शायद ये जवाब दे सकते हैं कि आचार्य और उपाध्याय को साधु में शामिल कर लिया गया, कह सकते हैं ना? आचार्य और उपाध्याय इन दोनों को साधुओं में शामिल कर लिया गया, इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आचार्य भी साधु ही है और उपाध्याय भी साधु ही है, दोनों कह सकते हैं ऐसा हो सकता है, ये भी एक हेतु हो सकता है। आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों ही साधु हैं, तीनों ही मुनि हैं, तीनों ही तपस्वी हैं, तीनों ही साधक हैं, आराधक हैं, आराधना करने वाले हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि आचार्य उपाध्याय और साधुओं के लिए एक ही शब्द दे दिया गया जिसका नाम है साधु, और उसमें वो गर्वित हो गए। इस तरह अरिहंत सिद्ध और साधु तीन मंगलों के अंदर पंच परमेश्वर शामिल हो गए हैं, गर्वित हो गए हैं। मेरा एक प्रश्न है यहाँ, आचार्य उपाध्याय और साधु इसमें से बड़े कौन हैं? निश्चित है आप कहेंगे आचार्य, उनसे छोटे उपाध्याय और उनसे छोटे साधु, बड़ों में छोटे शामिल हो जाते हैं, ये बात तो हमने सुनी है, देखी है, अनुभव की है, लेकिन छोटों में बड़े शामिल हो ये बात तो हमारे गले नहीं उतरती। हमारे पिताजी के नाम से निमंत्रण हो उसका परिवार है ना, तो हम उसमें शामिल हो सकते हैं ना, पिताजी के नाम से निमंत्रण है तो परिवार का निमंत्रण है तो हम उसमें शामिल हैं, बड़ों में छोटे शामिल हो गए, और मेरे ही नाम से मेरे मित्र का निमंत्रण आया तो उसमें पिताजी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना, हमने तो ये अनुभव किया है कि बड़ों में छोटे शामिल होते हैं, छोटों में बड़े शामिल नहीं होते हैं। तो अरिहंत सिद्ध आचार्य यदि कहते तब तो हम समझ लेते कि उपाध्याय और साधुओं को उनमें शामिल कर लिया गया है, उनको साधु कहा है, तो आचार्य और उपाध्यायों को साधुओं में शामिल कैसे करें हम? मैं क्लियर करता हूँ बात, वस्तु स्थिति ये है कि पद की अपेक्षा से हमें ऐसा लगता है कि आचार्य बड़े हैं, उपाध्याय बड़े हैं और साधु छोटे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि यहाँ सच्चे सुख की प्राप्ति की चर्चा चल रही है, मुक्ति के प्रयोजन की चर्चा चल रही है, मोहराग द्वेष रूपी पापों को नाश करने की चर्चा चल रही है। मोहराग द्वेष रूपी पापों को नष्ट करने वाले न आचार्य हो सकते हैं न उपाध्याय हो सकते हैं, लेकिन साधु हो सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष जाने के लिए साधु होना जरूरी है, आचार्य पद से या उपाध्याय पद से मुक्ति नहीं होती है। जब तक पद है तब तक जिम्मेदारी है, तब तक भार है, वजन है, और जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, ऐसी लाइन आती है, जिनके सर पर वजन होता है वे मझधार में डूब जाते हैं। और माथे देखिए, जब तक जो कोई भी आचार्य होते हैं ये क्या करते हैं, आचार्य पद से कभी मरण नहीं लेते, समाधि नहीं लेते, समाधि का जब काल आता है, संलेखना का जब काल आता है, जीवन पूरा होने का काल आता है, उससे पहले पहले ही वे अपने निर्देशन में किसी और को आचार्य पद दे देते हैं, स्वयं सामान्य मुनि हो जाते हैं, और उस सामान्य मुनि अवस्था में यदि ध्यान किया जाए तो उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य और उपाध्याय पद से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, साधु पद में ही आकर के मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए साधु पद को श्रेष्ठ मान करके, बड़ा मान करके, मुक्ति के मार्ग का असली हेतु मान करके साधु पद यहाँ रखा गया, आचार्य उपाध्याय पद नहीं रखे गए। बात कौन श्रेष्ठ है, कौन सा योग्य पद है, अरिहंत सिद्ध और साधु, और दूसरे प्रकार से यदि प्रयोग किया जाए तो साधु में आचार्य और उपाध्याय भी शामिल है, तो कुल मिलाकर के पंच परमेश्वर ही हमारे लिए उनके स्वरूप है। इसलिए भी एक और मैं आगे एक बात कहना चाहता हूँ, फिर वही पंच परमेश्वर को मंगल कहा ना, यहाँ शामिल होंगे ना तीन में, चौथे की बात करूंगा अभी, धर्म मंगल की। देखिए अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये पांच शामिल हो गए अरहंत सिद्ध और साधुओं में, इन पंच परमेश्वरों को मंगल कहा था इसमें, और पंडित जी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आत्मा हमारे लिए मंगल है, तो मैं इस संदर्भ में आपके सामने आचार्य पिंड कुंड की गाथा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिन जो देव आचार्य है उनकी योगकार की गाथा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक जैसी गाथा है दोनों जगह पर, आचार्य पिंड कुंड स्वामी भी इस तरह की गाथा कहते हैं और योगेंद्र जी योगकार के अंदर भी इसी तरह की गाथा कहते हैं। क्या बात कही है उन्होंने, कहीं भी होगी शायद आपने। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। डॉक्टर उपम सिंह जी वाले साहब ने उसका पद्य अनुवाद किया है, उनमें भी गाथाओं का उनकी शतक में भी गाथा दी। क्या है अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, मैं आपसे पूछता हूँ अरिहंत कौन है, बोले अरिहंत कौन है। हम भी शायद पीछे थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं, मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत स्मरण में आता है, और नीलेश भाई ने भी आपसे थोड़ी बहुत चर्चा की है। आप बता सकते हैं अरिहंत कौन है जिनके तमाम शरण होता है, कौन होते हैं अरिहंत जिनके क्षेत्र के अमर भावंदन होते हैं, कौन होते हैं अरिहंत जिनके परम अवतारिक शरीर होता है, कौन होते हैं अरिहंत देव लोग जिनके चरणों में झुकते हैं, बतलाइए बतलाइए कौन होते हैं आर्यन
जिन्होंने घाती कर्म क्षय किए।
तो हम आप हाँ घाती कर्म क्षय किए,
आप
इन अवस्थाओं की बात करेंगे ना तमाम शरण आदि की। हाँ यदि आप तमाम शरण आदि की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि मायावियों की भी हो सकती है, इनमें कोई दम नहीं है। असली बात क्या है, चार घाती कर्मों का अभाव, और ये भी व्यवहार से कथन है। क्या भैया, चार घाती कर्मों का अभाव ऐसा कहना यदि व्यवहार से कथन है, निश्चय से देखा जाए तो इन कर्मों के अभाव पूर्वक अंतरंग में प्रकट होने वाला अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय जिनके प्रकट हो गए हैं, ये होते हैं अरिहंत। कौन होते हैं अरिहंत जिनके अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं, वे होते हैं अरिहंत परमात्मा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अरहंत परमात्मा शरीर की अवस्था का नाम है, तमाम शरण की अवस्था का नाम है, संयोगों की अवस्था का नाम है, या आत्मा के गुणों की परिपूर्ण परिष्कृत निर्मल परम पवित्र पूर्ण पवित्र अवस्था का नाम है? बोलिए, आत्मा की परम पवित्र और पूर्ण शुद्ध अवस्था का नाम है अरिहंत अवस्था, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य इन चार गुणों की किसकी अवस्था है? परम औदारिक शरीर नहीं, हम बात कर रहे हैं असली बात कर रहे हैं, असली अपने अरिहंत कौन है, वो शरीर अरिहंत है या माथे पर लगे हुए तीन चक्र अरिहंत है? 64 चवर जो आजू बाजू में डुल रहे हैं, देव लोग चवर जो इधर से उधर हिला रहे हैं, उसका नाम अरिहंत अवस्था है, या आनंद चतुष्टय अंदर में जो प्रकट हुए हैं उसका नाम अरिहंत अवस्था है? यदि आनंद चतुष्टय के प्रकट होने का नाम अरिहंत अवस्था है, वे प्रकट तो आत्मा में होते हैं और आत्मा के अवलंबन से होते हैं। अरहंत माने आत्मा की अवस्था, असलियत में अरिहंत कौन है? आत्मा की अवस्था सिद्ध कौन है? चलिए सिद्ध परमेश कौन है? आत्मा की मुक्त अवस्था को सिद्ध कहते हैं, सिद्ध परमेश किसे कहते हैं? सिद्ध परमेश किसे कहते हैं? आत्मा की मुक्त अवस्था को सिद्ध परमेश कहते हैं। अब किसकी अवस्था है? इस अवस्था में अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, शरीर नहीं है उनके, परम मुक्ति की प्राप्ति हो गई है, आपने अनंत काल के लिए जो अवस्था हो गई है, किसकी? शरीर की, कर्मों की? नहीं नहीं, आत्मा की अवस्था, सिद्ध अवस्था ही आत्मा की अवस्था है। आचार्य उपाध्याय और साधु भी अंतरंग निर्मलता और पवित्रता का नाम है, बाहर में मग्न हो जाने का नाम मुनि नहीं है, साधु नहीं है, तपस्वी नहीं है। बाहर में कपड़े त्याग दिए, परिग्रह त्याग दिया, वस्त्र आभूषण अलंकरणों का त्याग कर दिया तो साधु हो गए हो? अरे ऐसे साधु तो बहुत होते हैं, इन साधुओं में दम क्या है? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। सिर्फ परिग्रह त्याग को ही आप साधु कहेंगे तो त्रिवेश के सारे साधु हो जाएंगे। संयोगों का नहीं होना, परिग्रह का नहीं होना, परिवार का नहीं होना, घरवार का नहीं होना, उसे परिग्रह कहेंगे। तो हमारे यहाँ इंडिया में तो रोड पर घूमते हैं गाय भैंस घोड़ा कुत्ता बिल्ली, जानवर, उनके कोई परिवार नहीं है, उनके कोई सगे संबंधी नहीं है, उनके कोई रिलेटिव नहीं है, वे सब मुनि हो जाएंगे। नारकियों के वस्त्र नहीं होते, कपड़े नहीं होते, परिग्रह नहीं होता, धन दौलत वैभव नहीं होती नारकियों के, अपरिग्रह हो जाएंगे सबके सब, साधु हो जाएंगे सबके सब। भैया ये बाहरी अवस्था कैसी भी हो, कैसी भी का मतलब बाहर में भी यद्यपि इन समस्त अवस्थाओं की तरफ से सावधानी होती है, लेकिन सिर्फ बाहरी अवस्था नहीं, अंतरंग की पवित्रता का नाम साधु अवस्था है, आचार्य उपाध्याय अवस्था है। कुल मिलाकर के पंच परमेश की अवस्था आत्मा की अवस्था है, इसकी आत्मा ही हमारे लिए मंगल है, आत्मा ही हमारे लिए उत्तम है और आत्मा ही हमारे लिए शरणभूत है, ये असली बात है। तीन की बात हो गई आत्मा के संदर्भ में, तो फिर इनको कहा ही ये कहा गया है कि वो जो मोर देश का अभाव और सच्चे सच्ची प्राप्ति है वो किसे हो गई है, अरियंतों को हो गई है, और किसे हुई है, सिद्धों को हो गई है, कि और किसे हुई है, कि साधुओं को भी वही अवस्था दिखाई देती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सुंदर है, ये हमारे लिए आदर्श है, ये हमें मंगल अवस्था की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं, इनको देख करके अंतरंग में हमारे जो पुरुषार्थ जागृत होता है उन जैसा बनने का, अरहंतों को देख करके अरहंत जैसा बनने की भावना होती है, सिद्धों की चर्चा सुनकर के सिद्ध सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, साधुओं का जीवन देख करके और साधुओं का सुखमय आनंदित जीवन देख करके साधु जैसा बनने की भावना जागृत होती है, इसलिए उपचार से व्यवहार से उनको भी मंगल कहा जाता है। चौथा पॉइंट रह गया देखिए अभी अपना, अभी सिर्फ तीन पॉइंट के संदर्भ में बात की है मैंने, अरिहंत सिद्ध और साधुओं के संदर्भ में बात की है सिर्फ मैंने, अरिहंत सिद्ध और साधु और इनमें शामिल किया है पंच परमेश्वरों को, तीन मंगल हो गए। चौथा मंगल कौन है, चौथे मंगल धर्म, धर्म मंगल है ना, अकेला धर्म नहीं, पुस्तक में क्या लिखा है चौथा पॉइंट, केवली पंडितो धम्मो मंगलम, क्या लिखा है, इनकी इनकी शुद्धता की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए, मैं एक बार इसको बोलने की शुद्धता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इसको याद किया भी होगा शायद, सत्तारी मंगल पाठ शायद बोलते भी होंगे और बहुत मार्मिक है, और कभी भी दर्शन करते समय देव दर्शन करते समय नमोकार मंत्र और ऐसो पंच नमो के साथ में इन तीन पदों को सत्तारी मंगल पाठ है इसको भी हमें साथ में बोलना चाहिए, इनमें जो बारीकियां हैं। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, पहला याद करते हैं और दूसरे और तीसरे में उत्तम और चरण शब्द जोड़ करके वो दोनों भी याद कर लेते हैं, ऐसा होता है जनरली, जैसे सत्तारी मंगलम तो मंगलम की जगह हमने कर दिया सत्तारी उत्तमा और फिर नीचे करिए सत्तारी शरणम भगवत ज्ञानी, तो बस हमारे को ऐसा लगता है जैसे याद हो गया हो। अब चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, देखिए ध्यान दीजिएगा, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम बाहु मंगलम और केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम। आप लोगों के सामने बुक है, आप लोग बुक के अंदर देख सकते हैं, मैं एक एक शब्द को ध्यान आकर्षित करके पढ़ रहा हूँ, ध्यान दिला रहा हूँ आपका, मुझे तो स्मरण में है कहाँ कहाँ क्या क्या गलती होने की संभावना रहती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पर्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा नहीं है, केवली पर्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो, ध्यान दिया आपने, ऊपर क्या चल रहा था, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम, मंगलम 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 चल रहा था ऊपर, बराबर पांच जगह चत्तारी मंगलम फिर अरिहंता सिद्धा साहु और केवली पर्णत्तो है ना, मंगलम शब्द था पांचवी जगह तेल था, यहाँ लोगुत्तमा शब्द लोगुत्तमा में क्या है, चार जगह तो लोगुत्तमा है और पांचवी जगह पर लोगुत्तमो शब्द है, सावधानी रखनी है, चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगित माँ श्रद्धा लोगित माँ साहु लोगित माँ और केवली पनसो दमो लोगित मो मो मानई अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, उसको राउंड मार सकते हैं उसके ऊपर। जब भी पढ़े सावधानी रख करके यहाँ लोगित मूल शब्द का प्रयोग किया गया है। व्याकरण की दृष्टि से है ना, आप कहेंगे इसका कोई स्पेशल अर्थ है क्या? स्पेशल अर्थ कुछ भी नहीं है, सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से सावधानी की बात है। ठीक इसी प्रकार नीचे वाले पद में तो बहुत गलतियां करते हैं लोग। चत्तारी शरणम पवज्जामी, अरहंता शरणम पवज्जामी नहीं है, क्योंकि ऊपर ऐसा लग रहा था ना अरहंता मंगलम अरहंता लोगित्मा, तो अरहंता शरणम पवज्जामी नहीं 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 अरहंते शरणम पवज्जामी। क्लियर है? ऊपर अरहंता मंगलम बोला था हमने, तो हमने सोचा मंगलम की जगह लोगित्मा लगा दो, तो अरहंता लोगित्मा अपूर्ति के लिए शरणम लगा दो, ठीक है ना। तो अरहंता शरणम पवज्जामी नहीं नहीं अरहंते, अरहंते लिखा है आप लोगों की बुक में, चत्तारी शरणम पवज्जामी अरहंते शरणम पवज्जामी। ठीक इसी प्रकार सिद्धे सिद्धे शरणम पवज्जामी, सिद्धे शब्द का प्रयोग होगा, सिद्धा नहीं है। मंगल के पद में चर्चा की गई थी सिद्धा मंगलम, लोगोत्तमा वाले पद में चर्चा की गई थी सिद्धा लोगोत्तमा, ठीक है ना। और यहाँ कह रहे हैं सिद्धे सिद्धा शरणम पवज्जामी नहीं है, सिद्धे शरणम पवज्जामी, साहु शरणम पवज्जामी और केवली पणक्तो धम्मो शरणम पवज्जामी नहीं है। केवली पणक्तम बोलो, ऊपर केवली पणक्तो धम्मो लोगोत्तमो था, केवली पणक्तो धम्मो मंगलम था, यहाँ केवली पणक्तम धम्मम पणक्तम तम की तरफ ध्यान देना है, केवली पणक्तम धम्मो भी नहीं है, धम्मम शरणम पवज्जामि। कितनी जगह ध्यान रखना है आपको, देखिए एक तो लोगोत्तमा वाले पद में अंतिम पद की तरफ ध्यान देना है, यहाँ केवली पणक् तो धम्मो लोगोत्तमो वहां ध्यान देना है मो पर। इसके अलावा आपको ध्यान देना है अरहंते शरणम पवज्जामि और सिद्धे शरणम पवज्जामि, अरहंते और सिद्धे दो जगह यहाँ ध्यान देना है। और फिर आगे केवली पणक् तो धम्मो शरणम पवज्जामि नहीं है, केवली पणक् तम और धम्मम शरणम पवज्जामि। ये बातें मैं इसलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि बहुत पुराने अभ्यासी लोगों को भी यदि आप ये चत्तारी मंगल पाठ सुनेंगे तो ये अशुद्ध बोलते हुए दिखाई देंगे। और कई बार तो ऐसे प्रयोग करके देखा है मैंने, आप किसी पढ़े लिखे स्वाध्यायी व्यक्ति को, अभ्यासियों को, विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्वाध्यायी अभ्यासी व्यक्तियों के सामने आप ये बालबोध पाठमाला का पहला भाग रखिए, दूसरा पाठ रखिए और उनसे कहिए कि आप ये चत्तारी मंगल देख कर बोलिए, वो देख करके बोलेंगे और गलत बोलेंगे। ख्याल में आ रही है बात, मतलब अपने को कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है। चलिए वापस लौट करके आते हैं अपन अपने प्रकरण की तरफ, किसी को कोई शंका तो नहीं है यहाँ तक?
हाँ तो मैं पूछ रहा था पंडित जी कि इसमें भाव में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से ही डिफरेंट है, भावार्थ में कोई फर्क नहीं है, सही है ना?
हाँ भावार्थ बिल्कुल सही है, लेकिन मंत्र है ना, शुद्धता भी अपने आप में बहुत महत्व रखती है। आप उसमें क्या भाव समझ रहे हैं वो एक बात अलग है, लेकिन किसी के सामने यदि आप गलत उच्चारण कर रहे हैं तो उसके भाव कई तरह से अलग निकल जाते हैं व्याकरण की अशुद्धियों के कारण। मतलब थोड़ी सी अशुद्धि हो जाए, मात्रा इधर की उधर हो जाए, तो इससे होने वाले दुष्परिणाम इनको तो हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आप लोगों के वहाँ तो हिंदी नहीं चलती होगी, हमारे यहाँ छोटे छोटे से बच्चे जो गाँव में जो रहते हैं ना, उन बच्चों को सिखाते हैं हम कि किस शब्द से क्या हो जाता है। पिता और पीता, ये हमारे पिता हैं और ये हमारे पीता है, पीता है मतलब ड्रिंकिंग और पिता है मतलब फादर, मात्रा इधर से उधर हो गई तो गड़बड़ हो गई। हम तो प्रूफ रीडिंग के अंदर की बात सिखाते हैं, हम तो विकराग विज्ञान वगैरह निकालते हैं ना, उसका संपादन वगैरह करते हैं, हमने डॉक्टर वारिन साहब की कला सीखी, मतलब वो हमारे जो सावधानी भी नहीं रखी गई। तो आप सोचिए कार्यक्रम शब्द लिखना है और कार्यक्रम में थोड़ी सी मात्रा इधर की उधर हो जाए तो कार्यक्रम की जगह क्रियाक्रम हो जाता है। क्रियाक्रम मतलब स्वामी स्वामी आया तो क्या नहीं बात अंतिम संस्कार तो कुछ शब्द का कुछ शब्द हो जाता है। अब वो व्याकरण की दृष्टि से क्या संगति बैठेगी, अशुद्ध तो अशुद्ध ही है और शुद्ध बोलने का जो फल मिलना चाहिए तो कहां से मिलता नहीं है। अशुद्ध बोलने से तो कई प्रकार के गलत अर्थ भी निकल सकते हैं और नहीं भी निकले तो जिसके सामने बोला जा रहा है वो तो समझ लेगा कि आप कितने पानी में है ना। और फिर जब हम सीख ही रहे हैं जब हम पढ़ ही रहे हैं तो फिर शुद्धि क्यों नहीं पढ़े, शुद्धि क्यों नहीं सीखे। बालवो पाठमाला एकदम चला रहे हैं तो बालवो पाठमाला में जो बारीकियां हैं उन बारीकियों की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। बराबर चलिए चौथे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। चौथा पॉइंट क्या है, सम्मो मंगलम, धर्म मंगल है। लो साहब कौन सा धर्म मंगल है, हिंदू धर्म मंगल है कि बौद्ध धर्म मंगल है, शिव धर्म मंगल है कि पारसी धर्म मंगल है, कंफ्यूशियस धर्म मंगल है, कौन सा धर्म मंगल है। बहुत हाँ धर्म मंगल है, केवल भगवान ने जो धर्म बतलाया है ना वो धर्म मंगल है। वास्तव में हम लौकिक धर्मों की बात नहीं कर रहे, हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, हम ईसाई धर्म की बात नहीं कर रहे, हम क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहे, उन सब धर्मों के साथ में कंपेरेटिव स्टडी होनी चाहिए। एक्चुअल में आपको पता लगेगा वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है, फिर आपको पता लगेगा जैन दर्शन महान क्यों है। इधर वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर आकर बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिनके अपने अपने दर्शन और अपने अपने धर्म चलने लगे हैं। अरस्तु है, सुकरात है, प्लेटो है, लाइबनीज है, डेकार्ट है, ह्यूम है, ऐसे बहुत सारे हैं, आइंस्टीन है, इन सब की अपनी अपनी थ्योरी है वस्तु व्यवस्था के संदर्भ में, दुनिया के संबंध में, जगत के संबंध में, इनके सबके अपने सिद्धांत हैं, इनके अपने अपने फॉलोअर्स हैं बहुत सारे। हमने इन सबके दर्शन पढ़े हैं क्योंकि बहुत लंबा काल हो गया, बहुत कुछ स्मरण में नहीं है, लगभग साफ सा हो चुका है दिमाग से, 15 साल पहले पढ़ा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो अपने को पता लगता है कि वास्तव में इसमें क्या वस्तु स्थिति, सब धर्मों की बात नहीं है। एक धर्म की चर्चा थी, सब धर्म वाले करते हैं ऐसी चर्चा, आप बहुत धर्म की चर्चा पढ़ेंगे तो वो भी कहेंगे धर्म मंगल है, धर्म मंगल है, धर्म तो बहुत अच्छी चीज है, धर्म तो होना ही चाहिए। हर व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ कहता है, हर व्यक्ति अपने धर्म को महान धर्म कहता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है बहुत से लोग जब इस तरह की बातें करते हैं कि अरे भाई धर्म को बचाओ अपने हाथ में है, हमने यदि धर्म को नहीं बचाया तो आगे क्या होगा, ये धर्म विध्वंस हो जाएगा, ये धर्म नष्ट हो जाएगा, हमें धर्म को बचाना चाहिए, इस दिशा में भी हमारे को सोचना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, नए लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं, ना उनका खान पान शुद्ध है, ना उनका विचार शुद्ध है, ना उनका चिंतन शुद्ध है, धर्म का क्या होगा, आपको पता नहीं है धर्म किसे कहते हैं, इसलिए आगे की बात कर रहे हैं। यहाँ जिस धर्म को मंगल कहा गया है, जिस धर्म को उत्तम और जिस धर्म को शरण कहा गया है, वो धर्म कौन सा धर्म है, वो धर्म आत्म धर्म है, वो धर्म वस्तु धर्म है। वस्तु का धर्म जानते हैं आप किसे कहते हैं, वस्तु धर्म। ये जैन दर्शन विश्व धर्म क्यों है, कोई कह सकता है मेरे से, आप लोगों ने कोई जवाब दे सकता है जैन धर्म विश्व धर्म क्यों है।
क्योंकि आत्मा का धर्म है,
सभी वस्तु का
आत्मा का धर्म है तो क्या हुआ, उसके विश्व धर्म होने का क्या संबंध है,
वस्तु स्वभाव का धर्म को जैन धर्म में बताया है धर्म।
ये जन्म मरण के चक्र से, जन्म मरण के चक्र से आत्मा को निकालने का जो हितोपदेशी है।
हाँ बातें ठीक है आपकी, लेकिन इस तरह की बातें करने वाले तो और भी हो सकते हैं ना। हम बताते हैं आपको ये जैन धर्म विश्व धर्म क्यों है, मतलब ये विश्व किसे कहते हैं? विश्व कहते हैं जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ये छह द्रव्य है। इनकी चर्चा करेंगे भागवत पाठमाला भाग दो में जब हम इन बातों को देखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि विश्व में जीव तो नहीं है, विश्व में तो कीड़े मकोड़े भी है, विश्व में तो मच्छी मच्छर भी है, विश्व में तो छिपकली है, कॉकरोच है ना, और जानवर है, पंचेंद्रिय है, पशु है, पक्षी है, सब है। विश्व में तो सिर्फ जीव मात्र ही नहीं है ना, विश्व में तो टीवी भी है, कैमरा भी है, कंप्यूटर भी है, टेबल कुर्सी भी है, पंखा भी है, लाइट भी है, मकान भी है, गाड़ी बंगला भी है, सब कुछ ये सब विश्व में है ना। किचन किचन के सामान भी सब विश्व में है, सब सब कुछ विश्व में है। अब हम बात कर रहे हैं विश्व धर्म की, धर्म किसका नाम है? तो जैन दर्शन ये कहता है वस्तु भाव धम्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, इसलिए विश्व धर्म है। वस्तु का स्वभाव धर्म मतलब क्या है? अग्नि का स्वभाव वो उसका धर्म है। अग्नि का भी धर्म होता है, मिश्री का भी धर्म होता है, चीनी का भी धर्म होता है, गुड़ का भी धर्म होता है, नमक का भी धर्म होता है, लेमन का भी धर्म होता है। कैसे हो गया ये कौन सा धर्म है? ये वस्तु स्वभाव धर्म है, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। ये जैन दर्शन की धर्म की व्याख्या है। जीव का धर्म पूजा करना नहीं है, जानना देखना जीव का धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म है। प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है। पानी का अपना धर्म है, पानी का क्या धर्म है भाई? शीतलता, ठंडा रहना, ये पानी का धर्म है। अग्नि का क्या धर्म है? उष्णता, गर्म, छूने पे पता लगता है अग्नि धर्म है। बर्फ, आइस का क्या धर्म है? शीतलता। चलने आ रही है आपको बात? नमक का क्या धर्म है? खारापना। चीनी, शुगर का क्या धर्म है? मीठापना। नींबू का क्या धर्म है? लेमन, खट्टा, खटाश, ये उसका धर्म है। दुनिया में कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से युक्त है, और जो वस्तु अपने स्वभाव से युक्त है वही वस्तु परमात्मा है। और जो स्वभाव धर्म की चर्चा करता है उस धर्म का नाम है वस्तु स्वभाव धर्मो, वो जैन धर्म है, वो असली धर्म है। बोलिए, बस ये बात हमारे को, वस्तु स्वभाव धर्म की बात हमारे को समझ में आ जाए, ये बात हमारे गले उतर जाए, कैसा धर्म है ये? वस्तु की चर्चा करता है, वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा की चर्चा करता है, पुद्गलों की चर्चा करता है। कौन सा धर्म किस चीज का है? पुस्तकों का अपना धर्म है, जीव का धर्म ज्ञान है, जानना देखना जीव का धर्म है, शुद्ध का अनुभव करना जीव का धर्म है। अलग अलग अपेक्षाओं की चर्चाएं की गई है, कोई शास्त्र की बातें नहीं है, वस्तु स्थिति की बात करते हैं, वस्तु व्यवस्था की बात करते हैं। ये अलग प्रकार का धर्म है, कोई विश्व धर्म, प्रत्येक वस्तु की चर्चा करता है। लकड़ी का अपना धर्म है, टेबल का अपना धर्म है, पंखे का अपना धर्म है, हवा फेंकना, गाड़ी का अपना धर्म है, बोलो घड़ी का अपना धर्म है, समय बताना, बोलो सब सबके अपने अपने धर्म है। तो आत्मा का भी कोई धर्म है या नहीं है? जीव का भी कोई धर्म है या नहीं है? है ना, जीव का क्या धर्म है? जानना देखना। तो जानना देखना यदि धर्म है, तो जानना देखना तो हम करते हैं ना, प्रत्येक जीव करता है ना, तो इसका मतलब हर जीव धर्मात्मा हो गया? आप बात ऐसी कर रहे हैं, हर जीव धर्मात्मा हो जाना चाहिए फिर तो, क्योंकि सबके पास में अपने अपने धर्म मौजूद है। हर जीव जानता देखता है, सब दुख का अनुभव करता है, सबने ज्ञान पाया जाता है, जितने भी जीव है सभी में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है। तो फिर बतलाओ मेरे को, फिर बात ही समझ में नहीं आएगी हमारे को, हर जीव धर्मात्मा हो जाएगा कि देखिए स्वभाव से तो प्रत्येक जीव धर्मात्मा है, स्वभाव से तो प्रत्येक जीव ही क्यों, स्वभाव से तो प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा है, लेकिन पर्याय में जो अपने उस वस्तु धर्म को जानते हैं, जो अपने उस वस्तु धर्म को पहचानते हैं, जिन्हें अपने उस स्वभाव की खबर है, वे पर्याय में भी धर्मात्मा हो जाते हैं, और जिन्हें अपने उस स्वभाव की खबर नहीं है, वे पर्याय में तो पापी बने रहते हैं, स्वभाव का ध्यान उनके किसी काम नहीं आता। स्वभाव से तो हम सब परमात्मा है, स्वभाव से तो हम त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, स्वभाव से तो हम सब भगवान है, स्वभाव से तो हम अनादि अनंत है, लेकिन वर्तमान पर्याय में हम अपने आप को परमात्मा, अपने आप को अनंत गुण वाला, अपने आप को ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला कितना अनुभव करते हैं ये बताइए। यदि हम अपने आप को अनुभव नहीं करते, हमारे वो चीज ख्याल में नहीं आती है, पकड़ में नहीं आती है, यदि वो वस्तु का स्वभाव हमारी श्रद्धा का विषय नहीं है, तो फिर वस्तु स्वभाव धम्मो हमारे किसी मतलब का नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है। उसकी श्रद्धा तो चौथे नंबर पर मंगल के रूप में स्मरण किया गया, फिर धर्म को स्मरण किया गया चौथे नंबर पर मंगल के रूप में। कौन मंगल है? धर्म मंगल है। क्यों? क्योंकि जिस जिसने उस धर्म का अवलंबन लिया है वो व्यक्ति निश्चित रूप से 100% सुखी हुआ है, हुआ है, हुआ है। कैसे सुखी हुआ है? कि सच्चा सुख प्रकट हुआ है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? जिसने उस धर्म का अवलंबन लिया उसके मोहराज जिसका अभाव हुआ है, इसी वास्तव में वही वस्तु का प्रभाव मोहराज देश का अभाव करने वाला होने से, सच्चे को उत्पन्न कराने वाला होने से मंगल है। वस्तु का प्रभाव सच्चे को उत्पन्न करने वाला होने से मंगल है, स्वभाव की अपेक्षा से मंगल है। ख्याल में आती है बात? मंगल चौथा मंगल, धर्म को मंगल क्यों कहा गया? धर्म को मंगल कहने के पीछे क्या हेतु है? धर्म को मंगल कहने के पीछे क्या कारण है? धर्म के आश्रय से मोहराग द्वेष का अभाव होता है, जिस ऐसा समझ दीजिए, उल्टा समझ दीजिए, जिसके आश्रय से मोहराग द्वेष का अभाव हो वो धर्म है, और जिसके आश्रय से सत्या सुख उत्पन्न हो वो धर्म है। मंगल की परिभाषा है ना, जिसकी सच्ची समझ से। देखो मंगल शब्द दो प्रकार से मंगल शब्द का विभाजन किया जाता है, शायद आपने सुना हो कदाचित पहले। मंगल, मंग मंग मतलब होता है पाप, और गाल यति इति मंगल है, गल गल मतलब होता है गलना, पापों को गलावे, तो उसका नाम मंगल। ठीक है, तीन अक्षर है ना, मैं के ऊपर बिंदी लगी हुई है, ग और ल, मैं के ऊपर बिंदी, ग और ल, इसको अपन दो प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक तरफ तो मैं और उसके ऊपर बिंदी एक तरफ लिया, प्लस द ल गल दूसरी तरफ रखा, तो ऐसे अपन के बीच में थोड़ा साइन लगा करके एक तरफ गल और पहली तरफ जो मंग लिखा है, वो तो मंग मतलब होता है पाप, और गल मतलब होता है गलाने वाला, क्योंकि पापों को गलाने वाला है वो मंगल है। बराबर, अब दूसरी जगह से तोड़िए इसको, मंग प्लस ले, ला ला एक तरफ रखें अकेला, और मंग ये एक तरफ रखें, तो मंग मतलब होता है सुख, और ले मतलब होता है लाना, जो सुख को लाता हो उसका नाम मंगल है। दोनों आते निकल गए मंगल शब्द से, पापों को गलाता हो उसका नाम मंगल है, और जो सुख को लाता हो उसका नाम मंगल है। वो पापों को गलाने वाला और सुख को लाने वाला कौन है? कि दुनिया में ये चार प्रकार के मंगल कहे जाते हैं, और अंत में निष्कर्ष रूप से देखा जाए तो वस्तु स्वभाव ही वास्तव में मंगल है, वस्तु स्वभाव ही वास्तव में धर्म है, और वस्तु स्वभाव ही वास्तव में शरण देने योग्य है। जगत की वस्तुओं का स्वभाव नहीं, अपने आत्म वस्तु का स्वभाव वही वास्तव में हमारे लिए मंगल उत्तम और शरण दूत है। जिन्होंने आत्मा की शरण ली वे अरिहंत भी मंगल हो गए, जिन्होंने उस आत्मा का अवलंबन दिया वे सिद्ध परमात्मा मंगल हो गए, जो आत्मा की शरण में और आत्मा के सानिध्य में आत्मा का अवलंबन लेते हुए प्रवर्तन कर रहे हैं ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु भी मंगल हो गए, और जो वो भगवान आत्मा के स्वभाव की करता है वो धर्म भी वास्तव में मंगल है। इस तरह से ये चार मंगल की चर्चा एक प्रकार से अपने आत्मा की ही होती है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में सर्वोत्कृष्ट यदि कोई मंगल स्वरूप है तो हम ही हैं, इसलिए जगत से दृष्टि हटाओ और अपने पर दृष्टि लाओ। जिनकी दृष्टि अपने पर आ गई वे परमात्मा बन सकते हैं, वे स्वयं मंगल स्वरूप हो सकते हैं, वे स्वयं मंगल में जाकर के विराजमान हो सकते हैं। इस तरह से हम सभी अपने स्वभाव को जाने, अपने स्वभाव का अवलंबन लेने, अपने स्वभाव को पहचाने, उन मंगल पदों की प्राप्ति करें, तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ हो जाए, शरण लेने में भी अपनी आत्मा की शरण लेने और सच्चे सुख की प्राप्ति करें, इसी भावना से मैं बात कर रही हूँ। विराम देना चाहता हूँ, किसी को कोई प्रश्न यदि हो तो आपने पूछ लीजिए। कोई प्रश्न किसी को?
शुक्रवार के अंतर
बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया रहा
हाँ पंडित जी। जय जिनेन्द्र, एक क्वेश्चन है कि बात बराबर है कि शरीर सुख सुख नहीं है और जीव का स्वभाव जानना देखना है, लेकिन करंट लाइफ में ऐसे आपकी बात सुनते हैं, दूसरे स्वाध्याय सुनते तो बराबर है, बाकी वापिस जहाँ सा ऐसा हो जाता है, कैसे हमें अपने रियल लाइफ
क्लियर नहीं आ रही है, शायद स्पीकर से बोल रहे हैं क्या आप?
हाँ मेरी स्पीकर चल रहा है, लेकिन अभी आती है आपको?
हाँ आती है, बोलिए।
सॉरी, क्योंकि अभी एक बार फोन स्पीकर पर है ना, तो वो मुझे डिस्कनेक्ट करके वापस आना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जानते तो है कि जीव का स्वभाव जानना देखना है और सेंसरी सुख सुख नहीं है, तो हम लोग क्यों जुड़ाव कर लेते हैं? मनन चिंतन भी बराबर है कि नहीं होता है, लेकिन वास्तविक लाइफ में कैसे हम उससे अपना ध्यान लगा रखे कि मेरा स्वभाव सिर्फ देखना जानना है, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी।
हाँ जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है वास्तव में, लेकिन इसका पुरुषार्थ तो जीव को स्वयं को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करा सकता है। ये इसकी व्यक्तिगत चीज है, निजी चीज है। जितना तत्व का अभ्यास होगा, जितना इसका चिंतन मनन होगा, जितना जनवाणी का सानिध्य होगा, उतना ही इसका उपयोग पर पदार्थों से हटेगा। इसके तत्व की चर्चा कितनी गहराई से इसके हृदय में उतरी है उसके ऊपर डिपेंड करती है ये बात। हमारे हृदय में तत्व कितना प्रवेश किया गया है, हम तत्व से कितने अधिक प्रभावित हैं। हम देखिए, हम स्वाध्याय के बीच में भी हमारे को घर की चर्चा भी ख्याल में आती है, तो इसमें तो हमारे दिलो दिमाग के अंदर घर ज्यादा हावी है। और यदि घर गृहस्थी के कार्यों के अंदर भी हमारे को बीच बीच में तत्व की चर्चाएं, तत्व के सिद्धांत और जिन सिद्धांतों के अनुसार हमारे जीवन में सहजता और सुख शांति आ सकती है, वो बात ख्याल में आती है। घर गृहस्थी के कामों में भी, विदेश में रहते हुए, शॉप पर रहते हुए, दुकान पर रहते हुए, यदि हमारे को ये बातें याद आती है, इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में थोड़ा बहुत उस तत्व ने प्रवेश किया है। उठते बैठते खाते पीते सोते जायज के दिन जिसके जीवन में सवार हो, तो फिर वो सुखी है, कुछ करना नहीं पड़ता है। जिसकी महिमा आती है, उपयोग अपने आप उसकी तरफ दौड़ता है। जिसकी वैल्यू ख्याल में आती है, दुकान पर बैठे हुए हर व्यक्ति को ग्राहक दिखा देता है। क्यों? ग्राहक की महिमा आती है, बिजनेस मिलता है, प्रॉफिट दिखाई देता है। यहाँ इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्राप्त होने की आशंका अपेक्षा होती है, वही व्यक्ति उसके साथ में जुड़ जाता है। यदि हमारे धर्म सुख कर लगता है, हमारे को यदि सुख का मार्ग धर्म में दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से हमारा उपयोग भी धर्म में लगा रहेगा। पुरुषार्थ अपना व्यक्तिगत निजी निजी पुरुषार्थ के दम पर हो सकता है। बोलिए।
हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू।
और किसी का कोई क्वेश्चन?
संपन्न करें अपन।
हाँ
बहुत बढ़िया हुआ पंडित जी।
बोल लेते हैं दो लाइन। जवाने के ज्ञान से तुझे लोकानुक, तुम्हारी मस्तक में सजा देते होंगे, सजा देते होंगे। नवाने लोकानुक शांति वाली माता। जय जिनेन्द्र शब्द
देखिए।